गंजा बिहारी
जय राधा माधव गंजा बिहारी
जय राधा माधव गंजा बिहारी
जय राधा माधव गंजा बिहारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन
जमुना तीर वन चारी
जमुना तीर
इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय श्री श्री गौर निताई पंचतत्व की जय श्री श्री जगन्नाथ वैदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्रो स्टेशन मल्टीवर्टी ऑल ग्रो स्टेशन मल्टीवर्टी ऑल ग्रो स्टेशन मल्टीवर्टी ऑल ग्रो स्टेशन श्री श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्रो स्टेशन श्रील प्रभुपाद की जय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नरं
चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं
भागवत सेवया
भगवते
उत्तम श्लोके
श्रीमद्भागवतम ये डिवोटीज काफी सेवा कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं है ना कई डिवोटीज काफी सेवा कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा चल रहा है सो रियली गुड एक्चुअली उनको अप्रिशिएट करने का भी टाइम नहीं मिलता है कभी बट आप लोग करना चाहिए अप्रिशिएट आपका बेस्ट भी कई डिवोटीज होंगे
लेवल फाइव का है क्या? इसमें हमारा नाम नहीं
है, आप लोग ट्रांसेंडेंट
ऐसा मत करिए, ट्रांसेंडेंट के नाम पे
करना है तो कर सकते हो, आइडियली होना ही चाहिए कोई ना कोई एटलीस्ट, है ना, नाम पे नाम तो होना ही चाहिए। आपका नाम नहीं है यहाँ पे, पिछली बार भी नहीं था, हाँ वही ट्रांसेंडेंटल ग्रुप में ग्रुप में है इसलिए
हमें मत
रखिए। ठीक है आप लोग ऐड कर लें, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करना है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है भागवतम क्या?
तो जो शुरू किया था इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, तो अभी तो इंट्रोडक्शन ही मेट का वो
तो मैंने आपको सिलेबस मुझे कम करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कल के दिन थोड़ा सा टाइम निकालूंगा और उसको सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे ही मिलेगा, आधा आधा कंप्लीट मिलेगा फिर आधा मिलेगा इस तरह से, पर विल ट्राई टू कवर, है ना। तो अभी आज जो है हम लोग का फिफ्थ, हाँ थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सेशन वन में हमने इस बार पिछले बार ग्लोरिफिकेशन किया था, भागवतम की ग्लोरिफिकेशन आज, तो फर्स्ट चैप्टर का हम थोड़ा सा बेसिक वो कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, आगे जगह है आप लोग आ सकते हैं इधर। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस बाय सेजेस, है ना। तो सेजेस हेडेड बाय कौन,
सोनकृषि,
और वो कहाँ पे,
नैमिषारण्य।
तो उसमें वो है कि नैमिषारण्य की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं प्रभुपाद, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नैमिषारण्य जो है वो शास्त्र में उनके बारे में वर्णन आता है। तो बताया कि जब सृष्टि की शुरू में ब्रह्मा जी जो है वो एक कंटेम्पलेट कर रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड को जो है एक विल की तरह, है ना, और तो इस तरह से वो डिजाइन कर रहे थे। तो वो जो विल जिसमें सारे यूनिवर्स उसमें होंगे, तो उस विल के जो हब है, जो सेंटर है, वो नैमिषारण्य में पड़ता है, जो सारे ब्रह्मांड को रखने का शक्ति रखता है। तो उस तरह से उसका वर्णन आया है, और भी है ना आते हैं कि वहाँ पे नैमिषारण्य में जो है बड़ाह पुराण में आया है कि रजिस्टेटेड द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन दिस प्लेस, वहाँ पे यज्ञ करने का शक्ति क्या होता है, लाभ क्या होता है जब नैमिषारण्य में। तो ये खास करके क्यों जो ऋषि जो है वो नैमिषारण्य में गया है, तो हर एक जगह का एक महत्व होता है। तो नैमिषारण्य में होता है कि वहाँ पे अगर सेक्रीफाइस या जो भी है ना यज्ञ किया जाता है, तो वो जो है वो डेमोनियक का जो पावर है उसको क्या कर देता है,
कम
कर देता है। तो क्योंकि कलयुग में डेमन का पावर ज्यादा होता है, कली का शक्ति ज्यादा होता है, तो इसलिए खास करके वहाँ पे ये कि वहाँ पे जो है उसका फल होगा। और फिर प्रभुपाद उसमें बताते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जो व्यास आसन, तो वहाँ पे जब भी सुत गोस्वामी को व्यास आसन में बिठाया गया है, तो व्यास आसन का एक महत्व होती है। तो भागवतम का स्पीकर का हमेशा एक व्यास आसन होना चाहिए, मतलब
जो भी रखना
चाहिए ना, मुझे भी मेरे जाना चाहिए ना। तो तो उसमें व्यास आसन में बैठने का ऊंचा स्थान होता है, ठीक है। तो उसमें भी फिर अब बताया कि वहां पे बैठने के लिए जो है योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो हम तो योग्य, हमारा योग्यता इतना ही होता है कि हम इस कौन से जुड़े में है ना, तो इसलिए तो ही शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास देव। तो वो एक्चुअली उच्च आसन में बैठने मतलब हम व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी शुड आइडियली तो व्यास आसन को प्रणाम करके फिर हमें व्यास आसन में बैठना है।
ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्ड कर ले लगा हुआ है, ठीक है। विश्वनाथ हुआ है नहीं, तो ये किसका है? ठीक है, तो आप बाद में दे दीजिएगा।
तो ये एक्चुअली से ट्रांसफर होता नहीं है।
तो फिर आपने लगाया
नहीं, मैंने मोबाइल में भी लगा रखा है रिकॉर्ड, मोबाइल में भी हो रहा है।
मोबाइल का उसको
तो
उस
मोबाइल से हो जाएगा,
हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये पब्लिक में कभी दीजिए नहीं, ये जस्ट फॉर उसके लिए, जैसे मान लो कल अगली बार कोई लेवल 5 की कोई लेगा तो वो सुनने के लिए है ना। तो उसमें जो है कभी कभी जो साधारण लोग हैं, तो हमें जो स्पीकर है उनको समझना कि हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे नहीं बोल दें कि जो है ना कम्प्लीटली डिफरेंट हो। सो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है, और कभी कभी साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना। डिवोटीज तो समझ जाते हैं कि है ना क्या है, क्यों बैठा हुआ ऊपर, लेकिन जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं सभी कभी समझ में नहीं आता हूँ कि उनको क्यों ऊपर में बिठाया है ना, हम क्यों नीचे नीचे बैठे। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जो है इस तरह से ऊपर बैठे हुए थे, और जो है वो आके किसी ने जो है इस तरह से प्रभुपाद से बोला है कि है ना, हाँ कोई रिपोर्टर या कोई था मतलब, तो प्रभुपाद से बोला है कि आप ऊपर क्यों बैठे हैं और हाँ हम सब नीचे बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। तब प्रभुपाद ने जो है आंसर क्या दिया था, प्रभुपाद ने एकदम चुप हो गए और उन्होंने कहा कि मैं नीचे बैठ के भी दे सकता हूँ, पर नीचे बैठने से देने से कुछ आपको ज्यादा समझ में नहीं आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे बैठ के अगर दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो यहाँ पे बैठ के दूंगा वो है उसमें जितना समझ में आएगा, नीचे बैठ दूंगा उसमें समझ में आएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं नीचे अगर बैठ के दूंगा तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप भक्ति के प्रिंसिपल जब आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आप भी ऊपर बैठ के दे सकते हो, बाकी सब नीचे बैठ सकते हैं, आप ऊपर बैठ के दे सकते हो, लेकिन अगर आप भक्ति का प्रिंसिपल को समझ जाओगे। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये परंपरा है, तो हम लोग कुछ नया चीज शुरू नहीं कर सकते। और भक्त सिद्धांत महाराज ने भी एक बार ऐसे ही कहा था कि व्यास पूजा के समय हम ऊपर बैठे क्यों बैठे, तो हमें ये नहीं ऊपर प्रेस्टीज के लिए बैठ रहे हैं या कुछ ऐसा, है ना, जस्ट परंपरा और इसे सर्विस। ऊपर बैठना, व्यास आसन में बैठना, इसे सर्विस। ऐसा नहीं है कि ऊपर व्यास आसन में बैठना मतलब हमें कुछ सम्मान के, हमें सम्मान मिला है, निश्चय रेस्पेक्ट फॉर व्यास देव। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उसमें आता है कि व्यास देव जो है वो जो भक्ति का जो फिलोसोफी है, भक्ति का जो नॉलेज है वो व्यास देव को इंट्रस्ट किया गया। तो उसमें आता है कि कई सारे और भी फिलोसोफी के स्कूल्स होते हैं, तो उसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर मैंने सुना है एक जगह पे कि कई जितने भी फिलोसोफीज हैं तो वो सिक्स डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, है ना, छह दर्शन। तो उस हर एक दर्शन का एक एक हेड है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो, है ना, कई लोगों को। तो एक है गौतम, फिर कनाद, ऋषि, सब ऋषि है, और फिर एक कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र। तो ये छह दर्शन आते अष्टावक्र, तो ये छह दर्शन जो है ना माने जाते हैं। तो उन सारे जो है देखते हैं, सारे जो है डिफरेंट स्पेकुलेशन है और वो है, लेकिन व्यासदेव जो है वो जो है रियल जो फिलोसॉफी है, जो हमें कृष्ण भक्ति उसकी जो है वो
इसका मतलब बाकी मटेरियल फिलोसॉफी
हाँ अलग अलग फिलोसॉफी उसमें हाँ तो फिलोसॉफी अलग अलग होते हैं ना जैसे अभी मटेरियल वेस्टर्न साइड में भी कई सारे फिलोसॉफीज होते हैं है ना
फिलोसॉफी मतलब दर्शन है ना
हाँ दर्शन
दिखाता
है हाँ कि लाइफ के बारे में दर्शन
अज्ञानता
कि लाइफ कैसा है क्या है ना उद्देश्य क्या है तो इस तरह से हाँ एटलीस्ट हमें नाम पता होना चाहिए कि हाँ छह दर्शन होते हैं यानी कि हम सिर्फ हम ही सब कुछ हैं तो ठीक है तो ओके फिर वहाँ पे उनको कह रहे हैं कि सुतो गोस्वामी को उन लोग कह रहे हैं कि आप क्योंकि आप सबमिसिव हैं और आप जो है सबमिसिव है इसलिए योर स्पिरिचुअल मास्टर एंडाउड यू विथ ऑल द फेवर्स बेस्टोड अपॉन ए जेंटल डिसाइपल तो जो भी शक्ति स्पिरिचुअल मास्टर से एक डिसाइपल को मिल सकता है जितना मिल सकता है उतना आपको मिला हुआ है तो बेस्ट पॉसिबल जो मर्सी है वो आपने लिया है क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं सबमिसिव तो सबमिसिवनेस का इम्पोर्टेंट तो इस तरह फिर वो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं तो शौनक आदि ऋषि जो हैं उनको जो क्वेश्चन कर रहे थे सुत गोस्वामी को तो उसमें कई क्वेश्चंस किया तो उसमें ये कहा जाता है कि छह क्वेश्चन किया उन्होंने और फिर उसका आंसर उन्होंने दिया अलग अलग सब उसमें तो उन क्वेश्चंस में से आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में वही क्वेश्चंस
लेकिन उसमें स्पेसिफिकली नहीं है वो
हाँ तो वो कहीं
निकाल के आप हमें दे देंगे तो हम लिख लेंगे एक बार उसको कभी 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 पूछ सकते हैं ना इस तरह से
तो एक क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि प्लीज एक्सप्लेन अस कि व्हाट इज द जो है एसेंस क्या है ये सारे शास्त्र का एसेंस क्या है जो इस कलयुग के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो कि वो इतने सारे पिछले बार भी हमने चर्चा किया इतने सारे चीज वेद हम नहीं पढ़ सकते तो उसमें से एसेंस क्या है और क्या चीज जो है वो सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो वो पूछते हैं तो ये पहला क्वेश्चन है फिर वो पूछते हैं हाँ वो एक्चुअली दो चीजें दो क्वेश्चन में आता है एक है आते हैं ये पूछते हैं कि सारे लोगों के लिए प्लीज एक्सप्लेन अस इन इजीली अंडरस्टैंडेबल वे कि आप इजीली अंडरस्टैंडेबल वे से प्लीज आपने आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि टू हैव द एसर्टेन टू बी द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल कि हमें समझ में आ जाए कि ये सारी चीज समझ में नहीं आता है बहुत सारी चीज तो समझ में आ जाए इजीली अंडरस्टैंडेबल वे से आप बता दीजिए कि सारे लोगों की कलयुग के लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है व्हाट इज अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल ये पूछते हैं ये टेक्स्ट नंबर 119 पे वो क्वेश्चन आता है फिर वो पूछते हैं कि There are many varieties of scriptures. बहुत सारे scripture हैं. Please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of living beings. ये
पहले दूसरे में अंतर
क्या है? अंतर नहीं समझ में आया.
उसमें भी प्रश्न what is the essence of शास्त्र?
नहीं वो मैंने वो बताया ना ये मैंने शुरू में बता दिया था दोनों क्लब करके. फिर मैंने बोला कि ये एक्चुअली दोनों का मिला के है वो तो पहला है what is the good for द पीपल इन जनरल वो इजिली अंडरस्टैंडेबल वे में बताइए आप फिर सेकेंड में बोल रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्र हैं अब उस शास्त्र में से सबसे एसेंस क्या है ठीक है ठीक है ये है 1.1.11 तो इसमें भी वो इंक्लूडेड है कि एसेंस क्या है जो सबके लिए बेनिफिशियल है पर उसमें था सिर्फ सबके लिए क्या बेनिफिशियल है और इसमें वो शास्त्र की एसेंस बताइए जो सबके लिए बेनिफिशियल है फिर आता है कि यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एपियर्ड इन द वूम्ब ऑफ देवकी. तो भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लिए हैं देवकी का घर में, उसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों आया भगवान. ये तीसरा, ये 1112. फिर बताते हैं कि द लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल एक्ट्स आर मैग्निफिसेंट एंड ग्रेशियस. And great learned sages like Narada sing of them. Please therefore speak to us who are eager to hear about the adventures performed by his various incarnations. तो भगवान की जो अलग अलग incarnations हैं उनके बारे में past times हमें बताइए. ठीक है, चौथा हो गया 1117. थर्ड वर्स अब फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ में भी डिफरेंस जो है ना बहुत ही कम है ना. तो उसमें भी फिफ्थ में ये बता रहे हैं कि वो वाइस सूत गोस्वामी, प्लीज नरेट टू अस द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम ऑफ सुप्रीम गॉड हेड्स मल्टी इनकार्नेशंस सच ऑस्पिशियस एडवेंचर्स एंड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड द सुप्रीम कंट्रोलर आर परफॉर्म्ड बाय हिज इंटरनल पावर्स. तो दोनों में ही भगवान के पास्ट टाइम्स की वर्णन की बात कर रहे हैं. वो डिफरेंस मुझे अभी पता नहीं लग रहा है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर दोनों में है कोई डिफरेंस. तो एक में भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करने के बोल रहे हैं और एक में बोल रहे हैं कि भगवान की अलग अलग जो इनकार्नेशन में पास्ट टाइम्स है उनके बारे में बताएंगे. ठीक है, तो ये 1118 हो गया. आप लोग भी पढ़ के समझ सकते हैं, हो सकता है अगर डिफरेंस आपको पता लगे तो बताइएगा. फिर सिक्स्थ है जो है जब भगवान, पिछले बार हमने चर्चा किया उसमें कि जब भगवान सब का साथ अपने साथियों के साथ भगवान की धाम में चले गए तो रिलीजन कहाँ पे है, तो धर्म कहाँ पे शेल्टर लिया हुआ है. ठीक है, तो उसके आंसर फिर बाद में देते हैं जो भागवतम है. ठीक है, तो इसका श्लोक है 1123. ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट चैप्टर. यहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सेकंड चैप्टर में कई सारे आंसर्स दे रहे हैं उनमें, और सेकंड चैप्टर में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं उसमें जो है. वो सारे इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं जो प्रभुपाद की, जो वो भजन है, पोएम जो प्रभुपाद ने लिखा था बरो कृपा कोयले कृष्णा, उसमें कई सारे वो सारे श्लोक कोटेड है ना. नष्ट प्रायश अवधेश भी सेकंड में ही आता है. तो ये सेकंड चैप्टर में बहुत सारे भागवतम की ग्लोरीज की है ना इन्फॉर्मेशन है. शिन्नता सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन मृदंत स्तवद्राणी विधुनति सुरत सुतम नष्ट प्रायश अवधेशु. ये तो वो सारे श्लोक आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है. तो कई सारे मैंने इंक्लूड किया है उसमें, और जो नहीं भी किया है आप लोग उसको याद कर सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे सदा राजस्तम बाबो काम लोभादेश चाहिए चेतयत न विद्यम सिदम सत्य प्रसिद्ध थी. तो ये वंडरफुल वर्सेस है. उसमें कई सारे मैंने मेंशन किया है। अगर आपको और भी सीखना है उसमें कुछ ही सिलेक्टेड दिया मैंने, लेकिन और भी करना है तो प्रभुपाद की श्लोका बुक में आपको मिल जाएगी, आप उसमें से उठा सकते हैं।
चैप्टर का नाम क्या प्रभु जी?
नाम चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है ना,
डिवाइन एंड
डिविनिटी। डिवाइन एंड ठीक है। चैप्टर थ्री जो है वो हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो है कृष्णा, हाँ भगवान श्री कृष्ण का वो है, इज द सोर्स ऑफ ऑल इंकार्नेशन।
कुछ श्लोका
हाँ मैंने दिया था, तो उसमें दिया है मैंने
1.13, 1.14, 1.17, 18, 2.17, 18,
वो सब है नष्ट। तो ठीक है, और भी आप सीख सकते हो, मतलब ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, नाइस वर्सेस। तो इसमें प्रभुपाद की भजन में ही इतने सारे वर्सेस आ रहे हैं, तो आप लोग इसको तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, फिर चैप्टर थ्री में आपको वो फेमस श्लोक मिल जाता है चैप्टर थ्री में, जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है ना, तो एते चमश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसको भी आप याद कर सकते हैं। विदयंती युगे युगे है ना। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है ना। अब हम आते हैं फोर्थ पे, जो आज की टॉपिक।
तो हमने ये वो मतलब कवर कर लिया पिछले क्लास में
क्या
चैप्टर सीधे कवर कर लिया?
पिछले इंट्रोडक्शन ही था तो ग्लोरीज किया था हमने, तो वो एक्चुअली किसी भी पिछले और इसमें पढ़ता नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एटलीस्ट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें से हम कुछ कुछ शॉर्ट में करके
हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं, मतलब
टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अब इसमें आ रहा है कि नारद मुनि, तो आज का टॉपिक है नारद मुनि कन्वर्सेशन बिटवीन नारद मुनि एंड व्यासदेव है ना। तो वहां पे आता है कि जो व्यासदेव जिन्होंने सारे वैदिक लिटरेचर्स को उन्होंने जो है कंपाइल किया, एडिट किया कलयुग के लिए, पहले तो श्रुति में होता था है ना, सुन के और रिपीट करना, तो उन्होंने सारे उसको रचना किया, एडिट किया, लिखा सबके लिए, इवन स्त्री वैश्य के लिए उन्होंने जो है रामायण महाभारत ये सब वर्णन किया। तो फिर भी उसके बाद भी वो क्या थे, वो है ना, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो उसमें आता है कि वो ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण है, स्टिल हिज माइंड वॉज नॉट सेटिस्फाइड, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. तो हम कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, उसको पढ़ते जाते हैं। श्लोक नंबर 30 पे हम सोचते हैं, तो कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, दो वो सोच रहे हैं एक्चुअली आपस में, कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. तो प्रभुपाद लिखते हैं पार्पेट में, undoubtedly Srila Vyasadeva was complete in all the details of Vedic achievements. Purification of the living being submerged in matter is made possible by the prescribed activities in the Vedas. But the ultimate achievement is different. Unless it is attained, the living being, even though fully equipped, cannot be situated in the transcendental normal stage. Srila Vyasadeva appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. तो यहाँ पे हाँ हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है. तो व्यासदेव ने सब कुछ उन्होंने रचना किया, सारे अचीवमेंट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भी अचीवमेंट कंसिडर कर सकता है कोई, सारे चीज किया इवन फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद भी वो जो है वो अंदर फील कर रहे हैं कि नॉट सेटिस्फाइड. और ये हम हमारे साथ तो होता ही होता है कि हम जो है सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना. शुरू में हम सेटिस्फाइड होते हैं पर जैसे आगे जाते हैं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. और फिर हम जो है हम उस चीज पे फिर ब्लेम करने लगते हैं, प्रोसेस पे ब्लेम करने लगते हैं, सोच डाउट करने लगते हैं कि इसमें कुछ हमें तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमने जो ब्लीस के बारे में पढ़ा था वो तो हमें कभी नहीं महसूस हुआ. तो और फिर हम जो है डिससेटिस्फाइड होते, फिर हम वापस जो है सेटिस्फेक्शन के लिए फिर हम जो है मेटेरियल चीजों की तरफ देखते हैं, शायद उधर मिल जाएगा वो चीज. यहाँ पे तो मिली नहीं, हमने तो इतना कुछ किया, हमने बहुत कुछ पाया लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. तो फिर वही ठीक है, हमारा माइंड उधर की तरफ जाता है और ये जाता ही जाता है. तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफेक्शन क्या है वो पहले हम समझ लें कि यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट एक चीज है और प्रभुपाद ने कह रहे कि रियल अचीवमेंट अल्टीमेट अचीवमेंट. तो अचीवमेंट को हम जो है कभी कभी जज करते हैं, ये सब चीजें एक्सटर्नल चीजों से भी जज करते हैं. अचीवमेंट मीन्स आई हैव गिवन ए वेरी गुड लेक्चर, आई हैव बिकम ए रिनाउंड जो है प्रीचर, आई हैव बिकम दिस इज ऑल्सो अचीवमेंट, वेरी वंडरफुल बेस, वेरी वंडरफुल है ना ऑर्गेनाइजेशन, दिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पर वो रियल अचीवमेंट नहीं है. तो वो रियल अचीवमेंट का जो है वो क्या है रियल अचीवमेंट, हम भूल ना जाए मतलब चीजों में, है ना. जो चीज हम मेजर करते हैं है ना, वो मेजर जो है वो हम करेक्टली मेजर करें और ये करना भी जरूरी है ना. क्योंकि यहाँ पे व्यासदेव जो है वो सोच सकते हैं, कभी कभी फुलिश अगर हम इग्नोरेंस में होंगे तो हम सोचेंगे हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो गया है ना, आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, लाइफ अचीव हो गया. वी कैन सी, वी कैन जज आवर सक्सेस बाय एक्सटर्नल थिंग्स. पर व्यासदेव ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो अपना अंदर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ये बाहर इतना कुछ है, सबने मेरे को बोल रहे हैं कि आई एम ग्रेट, पर जो है मैं अंदर से नहीं फील कर रहा हूं, है ना. तो वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, वो अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, कि मैं क्या हूं. तो हम लोग आए हैं, हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि बाहर से सब बोल रहे हैं कि आप ग्रेट डिवोटी, हाँ आपका जैसे कोई नहीं है, जो भी है आप, है ना, इट्स वेरी नाइस. तो हमें लेकिन देखना है कि क्या इंटरनली वही चीज है मैं हूं. क्योंकि इंटरनल जो है एडवांसमेंट वो हम खुद ही पता कर सकते हैं और एडवांसमेंट का फिर लक्ष्य, तो वो मेजरमेंट हम करेक्ट मेजरमेंट करें कि हमारे एडवांसमेंट की मेजरमेंट क्या है, अदरवाइज ये होगा। और हम ये बेटर यही होता है कि हम अगर शुरू से उसी पे चले कि परफेक्शन, अल्टीमेट परफेक्शन क्या है, अल्टीमेट अचीवमेंट क्या है, उसी पे रहेंगे फोकस्ड, तो फिर आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो फिर हमें लगेगा सब कुछ किया लेकिन मैं असली चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो वो असली चीज क्या है, कौन बताएगा?
Our connection with Krishna.
Our love for Krishna. है ना? Love for Krishna. ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता अम्बा जय विश्व
ना काम है
तो मम जन्मनि जन्मनिश्वर भवतात् भक्ति। तो यही है, तो ये हमें देखना है कि क्या हो रहा है। और अगर वो चीज है, कनेक्शन है कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ लविंग अट्रैक्शन हो रहा है, देन कितना भी अचीवमेंट हो जाए तो भी कोई प्राइड नहीं आएगा, और कुछ नहीं भी हो तो भी डिप्रेशन नहीं आएगा, है ना। और ऑफ कोर्स जो है कुछ करने के लिए ही अपना माइंड चाहेगा कि कुछ करें कृष्ण के लिए, और वो जो भी करेंगे इट विल बी ए प्योर एक्टिविटी, और वो अपने आप होता भी चले जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो सारी चीज तो जरूरी है, पर उसके पीछे जो है रीजन, जो मेन मोटिवेशन है वो ये है कि लव, प्योर लव फॉर कृष्ण, है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई अचीवमेंट आपको हमें मिलना है, है ना, आप उस अचीवमेंट वो हमें हो सकता है मिल सकता है, लेकिन हमें उसके लिए किसी डिवोटी को हर्ट करना पड़ रहा है। मान लीजिए हमें कुछ भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या मान लीजिए कुछ जाके प्रीचिंग करनी है, या कोई भी उसमें मान लो हर्ट हो रहे हैं कोई डिवोटी, तो हमें पता है कि उन डिवोटी हो सकता दुख लगे या कुछ, लेकिन पता होते हुए भी हम उसको कर लेते हैं क्योंकि आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू अचीव इट
फॉर द प्लेजर, फॉर द प्लेजर ऑफ वैष्णवास गुरु,
हाँ हो सकता है। तो उसमें फिर हमें देखना जरूरी है कि क्या वो चीज मेरे को वो जो रियल सरेंडर टू कृष्णा देगा कि नहीं देगा, क्या उसके बाद मैं चेंटिंग में जब बैठूंगा क्या मन मन चेंटिंग में लगेगा कि नहीं लगेगा।
मन तो नहीं लगेगा, फिर लगाना पड़ता है ना मन को,
तो है ना उसमें हमें देखना। तो ये चीज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए जैसे जनरली आप सुनेंगे डिवोटीज जनरली पसंद करते हैं हारना पसंद करते हैं डिवोटीज जितना पसंद नहीं करते हैं, मतलब जब दो डिवोटीज या है ना कभी ऐसे होता है तो हारना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हारने से जो है मतलब जब एक्सेप्ट कर लेते हैं या और डिवोटीज को, या मतलब पॉइंट ये है कि आप समझने की कोशिश कीजिए चीज को कि उसमें उनका जो भी वही चीज करते हैं जो कृष्ण भक्ति में उनको अनुकूल होती है, जिसमें उनका मन कृष्ण पे ज्यादा लगता है, सरेंडर कृष्ण पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर एसेंस चीज को समझ लीजिए, है ना, यहाँ पे जी हम अचीव चाहे कर भी लेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग कृष्ण, कि कृष्ण को ये खराब नहीं लगना चाहिए, भगवान को दुख वो नहीं होना चाहिए, डिस्प्लीज नहीं होनी चाहिए कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जानते हैं मेरा यहाँ पे मोटिव क्या है और सिचुएशन क्या है, बहुत सारी चीज। तो अगर वो चीज है कि अगर कृष्ण को यही चीज पसंद है तो ठीक है, है ना, एंड दैट विल मेक आवर सरेंडर टू कृष्ण मोर। ठीक है, तो वो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है एग्जैक्टली आप मैथमेटिकल रूल नहीं बोल सकते कि कब जो है आप समझते हैं, जैसे कोई बोला कि प्रभु जी आप बैठ जाइए यहाँ पे ऊपर ही बैठ जाइए, आप एक दो बार बोलते हैं फिर आप बैठ जाते हैं या नहीं बैठते हैं, बोलते नहीं मैं नीचे ही बैठूंगा नहीं। कभी कोई रिक्वेस्ट करता है आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं, तो सारे चीज पीछे चीजों का पीछे प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होंगे तभी मैंने बैठा है, इट्स नॉट फॉर माय एंजॉयमेंट या माय सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है जस्ट। तो ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप नीचे बैठेंगे तो ही करेक्ट है, या आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऊपर बैठने के लिए आप बैठ जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हर एक चीज के पीछे ये प्रिंसिपल है। तो उस केस में कभी हम हार भी जाते हैं, कोई डिवोटी मान लीजिए इतना रिक्वेस्ट किया प्रभु जी आप ले लीजिए गिफ्ट, नहीं नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए नहीं चाहिए, है ना, तो वो भी हो सकता है ड्यूटी को फिर बुराई लग जाए, तो आपने गिफ्ट लिया नहीं, सोचा आपने कि नहीं है ना गिफ्ट लूंगा उनसे कुछ सेवा ले लूंगा तो ये फिर कैसा हो जाएगा, फिर तो मैं है ना मैं वही ज्यादा अच्छा है, मैं किसी से कोई सेवा नहीं लू वो, है ना, तो इस टाइप से भी माइंड में आता है कि हम सेवा नहीं लेंगे और उनको सेवा ही करेंगे, लेकिन अगर वो हमें बोल रहे हैं कि आप गिफ्ट ले लो प्रेम से दे रहे तो वो सब चीज सेंसिटिव है, उसको हमें समझना है कि वो एक्चुअली किस चीज से वो प्रसन्न होंगे, गिफ्ट लेने से अगर प्रसन्न हो जाने तो मैं लेके अगर ले लूं तो क्या नुकसान है। सो दिस आर द वेरी है ना सटल थिंग्स कि मैं ले रहा हूं पर उस लेने के पीछे मोटिवेशन क्या है कि फॉर प्लेजर ऑफ दैट डिवोटी, एंड ऑफ कोर्स उस डिवोटी को प्लेजर अगर कल बारे में सोचा मैंने तो दैट मींस चैतन्य महाप्रभु विल बी प्लीज्ड और नॉट प्लीज्ड, कृष्ण विल बी प्लीज्ड और नॉट प्लीज्ड, ठीक है, तो वो उस केस में ये ऑस्ट्रेटी हो जाता है, उन्हें कभी कभी गिफ्ट लेना भी एक ऑस्ट्रेटी हो जाता है, या कोई प्रसादम आपको अच्छा खिला रहा है तो भी प्रसादम पाना भी एक ऑस्ट्रेटी हो जाता है, ये नहीं ऑस्ट्रेटी मतलब सिर्फ जो है ठंडे पानी से नहाएंगे तो ही ऑस्ट्रेटी है,
शरीर के
है ना, तो ऑस्ट्रेटी किसी स्टेज में भी हो सकता है पर वो उसके पीछे वही है। और कभी कभी हम एडामेंट जब हो जाते हैं, एडामेंट एडामेंट मतलब नहीं सोए नहीं यहाँ पे क्लास में आत्मा नाम भक्त देखो आप लोग लीडर आप कैसे
लीडर सोए हुए हैं
लीडर आप लोग ठीक है
इसलिए नहीं पानी 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 कह दिया इसलिए लीडर है
पानी पी लीजिए
नहीं और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है ये सहज या वर्ड्स आप लोग नहीं यूज कीजिए है ना दीज आर काइंड ऑफ सहज या वर्ड्स ठीक है हम लोग जो है यहाँ पे वो नहीं है तो जब आप वर्ड्स रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट अंदर है ठीक है इफ यू हैव अ रेस्पेक्ट वी शुड कीप इट इन साइड इन पब्लिकली ठीक है तो वो अच्छा नहीं दिखता है शोभा नहीं देता है तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है हमें समझना है कि क्यों किसी को अगर उसके लेवल की से ज्यादा अगर ग्लोरीफाई करते हैं किसी को दैट इज जस्ट इनडायरेक्टली इंसल्टिंग इनडायरेक्ट वे ऑफ इंसल्टिंग ठीक है सो देयरफॉर हमें वो चीज प्रैक्टिस में लाना नहीं है कि योर ग्रेस इफ यू डू लाइक दिस योर ग्रेस विल डू डू नॉट यूज इन इस कॉन्जेनरली है ना इट इज रिजर्व्ड फॉर ओनली है ना
ग्रेस तो है ही ना हम उसको ले या ना ले
बट इन स्पीकिंग वी नेवर यूज वी शुड नेवर यूज एटलीस्ट फॉर आस है ना दिस काइंड वेरी सीनियर डिवोटीज वी कैन ठीक है सो
His grace लिखते हैं होते हैं फिर भी नहीं कहना है
क्या
अगर हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं वो खुश होते हैं तो प्लीज कर रहे हैं डिवोटी को नहीं करना है
उसमें भी जेन्युइन होना चाहिए
जेन्युइन अगर नहीं है, है तो हमारा तो अधिकार
तो पहले तो अब हम दूसरे पॉइंट में चले गए तो अभी हम उसको अलग से बाद में कभी करेंगे ठीक है पर मेन पॉइंट आपने समझ लिया ना यहाँ पे एटलीस्ट वो यहाँ पे फ्लटरिंग वाला का बात नहीं होनी चाहिए है ना ठीक है ओके तो हम पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे उसमें एडामेंट तो जो एडामेंट वाला बात आती है चाहे वो हम्बल वाला स्टेट में एडमेंट हो या है ना कुछ पाने का एडमेंट हो, कोई भी एडमेंट चीज ही अच्छा नहीं है, वो उसी एडमेंट के पीछे ही पॉलिसी को रहता है हमारा कि मैं तो मैं तो नीचे ही बैठूंगा प्रभु जी, नहीं चाहिए है ना, मेरे लिए नहीं चाहिए है ना। तो वी शुड, इट डजंट मीन कि मतलब कृष्ण विल बी प्लीज्ड। तो होके रह के मैं हो सकता विन हो गया कि मैं तो है ना जो है जीत गया एक तरह से मैं जीत गया, ड्यूटीज के बीच में कंपटीशन में मैं जीत गया, मैं नीचे ही बैठा अल्टीमेटली, उनको बड़ा सीट दिया मैंने, बट मैं इट में इट विल बी सक्सेसफुल, आई विल बी विनर, बट माय हार्ट may not be closer to Krishna, है ना? तो वो देखना है और वो चीज फिर मेन पॉइंट है कि हम जो भी करें अल्टीमेटली हमें कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन और होगा, तभी जाके हम लोग जो है ना हमारे बाकी सारे चीज मीनिंगफुल है, ठीक है। फिर आते हैं हम तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे इस श्लोक में, ऑल नॉलेज डिसेमिनेटेड इन द मटेरियल वर्ल्ड इज रिलेटेड आइदर विद द बॉडी और विद द माइंड एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल despondence. This is not always detected, even though one may be the greatest erudite scholar in materialistic knowledge. तो ये generally detect नहीं कर पाते हैं कि actually हमारा जो है cause of suffering क्या है. Actually cause of suffering या cause of unhappiness जो हम कभी feel करते हैं depressed या हम यार unhappy है ना, भक्ति में unhappy है ना, तो we feel it है ना, ठीक है ना, क्योंकि आप देखते हैं कि भक्ति मतलब हम लोग आते हैं पाथ में, मतलब इसे पाथ ऑफ रिनंसिएशन, तो हाउ मच इट टेक्स रिनंसिएशन, इट्स नॉट इजी टू डू। तो शुरू शुरू में हमें रिनंसिएशन महसूस नहीं होती है कि हमने क्या रिनंसिएशन करना है या त्याग करना है या क्या करना पड़ेगा, एंड जैसे जैसे हम आगे जाते हैं फिर हम जो है ना वी फील अनहैप्पी, we opt for going back, है ना, क्योंकि वहां पे वो happiness मिलता है जो यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो वो जो है हमारा unhappiness का cause जो है वो actually ये नहीं है, भक्ति का process नहीं है, unhappiness का cause है कि हम भक्ति का process को सही ढंग से नहीं लिया, इसमें हमारा materialistic कुछ चीज रखा हुआ है, भक्ति का process को हमने कुछ material चीज रखा हुआ है और उस चीज को प्रभुपाद लिख रहे कि वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कि कॉज क्या है उसका अनहैप्पीनेस का, और ये बहुत ग्रेट स्कॉलर भी उसको नहीं पता कर पाते, हम लोग के तो क्या बात है, हम लोग तो जहां पे भी जब भी हमें दुखी होते हैं हम लोग तो यही है। तो नारद व्यासदेव को इतने ग्रेट स्कॉलर है ना, उनको भी ये फील हो रही है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और उसके आंसर आगे उसके आंसर देते हैं मतलब भागवत में आते हैं, यह तो भक्ति का दक्ष जे अहि तो की सवाई पुंश परो धर्म, यह तो भक्ति का दक्ष जे अहि तो की अप्रतिहत ये आत्मा सुप्रसिद्ध, सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है अहि तो की अप्रतिहत,
उससे पहले सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता भक्ति में,
ऐसे हम कह नहीं सकते कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगा कि कभी आपको महसूस हो जाए कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन किस लेवल की सेटिस्फेक्शन हो रही है, कभी कभी हो सकता है मेटेरियल सेटिस्फेक्शन भी हो रही है, ईगो की सेटिस्फेक्शन हो रही है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन हो रही है ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो सेटिस्फेक्शन कोई ना कोई लेवल पे मिल रही है, हो सकता है, बट वो चीज टेम्पररी है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से हो सकता है अभी मिल रही है लेकिन किसी सिचुएशन में नहीं मिल रही है, तब हमें फिर महसूस होगी हाँ यहाँ पे आके गर्व हो ना, वो नहीं है, मैं तो इस होप से आया था कि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा है ना, लेकिन वो वही चीज नहीं है, तो फिर क्या है इसमें, फिर तो ये चीज है। फिर आगे जो है ओके, फिर आगे शुरू हो जाते हैं नारद मुनि, फिर आते हैं है ना, और तो इसलिए नारद मुनि जो है आके उनको बताते हैं उनकी कॉज क्या है डिससेटिस्फेक्शन, और नारद मुनि को व्यासदेव कहते हैं कि लाइक द सन योर गुडनेस कैन ट्रेवल एवरीवेयर इन द थ्री वर्ल्ड्स है ना, तो नारद मुनि जो है वो हर जगह पे जाते हैं, तो आज ही क्लास में बता रहे थे नारद मुनि कैसे जो है जाके डिवोटीज क्रिएट करते हैं है ना, तो वो कह रहे हैं कि हाँ आप जो है कहीं भी जा सकते हो, तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि डिवोटी जो है वो कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी जा सकते हैं प्रभुपाद है ना, के लिए कोई कंट्री के लिए कोई रोक बंधन नहीं है, सो दैट काइंड ऑफ डिवोटी है ना शुड बी है ना, इस डिवोटी सो पावरफुल कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि लिविंग एंटिटी कितने पावरफुल हो सकता है, कि कृष्णा की जब पावर मिल जाते हैं जब प्योर हाँ तो उनको कितना पावर होता है, इमेजिन अनइमेजिनेबल, हमारे कंडीशन सोल के लिए इमेजिनेबल नहीं है, बट हो सकता है एक सो एक सोल जो पूरा बॉडी को चलाता है इतना छोटा, इसकी पावर तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं ना ब्रेन का, हम कुछ इससे ही यूज करते हैं, पूरा तो करते नहीं, पूरा करें क्या होगा कुछ है अनइमेजिनेबल है, तो हमारे सोल का भी प्योरिटी का तो हाँ कुछ है ही नहीं, छोटा सा कुछ है उसी का ही यूज कर रहे हैं, उसी से पता चलता है, इससे वंडर छोटा सा सोल पूरा बॉडी को हाँ वो करता है मेंटेन करता है, लेकिन जब पूरा प्योर स्टेट में आएंगे हाँ तो उसमें कितने पावर हो सकता है, पूरा ब्रह्मांड को ताड़ने का शक्ति होते हैं है ना,
प्योर स्टेट में ही करने का तूने कर दिया
तो वो कह रहे हैं कि आप जो है कहीं भी जा सकते हैं, एंड लाइक द एयर यू कैन पेनिट्रेट द इंटरनल रीजन ऑफ एवरीवन, तो लाइक द सन आप एक्सटर्नली कहीं भी जा सकते हो, और लाइक एयर आप पेनिट्रेट कर सकते हो इंटरनली भी जाने का, आप इंटरनली कहां जाएंगे है ना, हृदय में, किसी का हृदय में क्या है ना, वो ऐसे जो स्पिरिचुअल मास्टर है वही देख पाते हैं है ना, इसलिए जो प्रभुपाद देखते थे तो ऐसे करके देखते थे, और देखने से ही डिवोटी हो जाते थे इन लोग, क्योंकि प्रभुपाद जो देखते थे तो स्ट्रेट जो है उनके हृदय में देखते थे है ना, कि उनके हृदय में क्या डिजायर है, और वहां पे अटक करते थे कि, और तुरंत उनको पता चल जाता है कि मेरा यही कमियां है ना, ये वीकनेस, तो वो उस चीज को देख पाते हैं जो हो सकता है हम खुद नहीं देख पा रहे हैं, हम खुद अपने हृदय में झांक के नहीं देख पा रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी होती है, उनकी शक्ति होती है, तो वो कह रहे हैं सो एज सच यू आर एज गुड एज ऑल परवेसिव सुपर सोल, प्लीज देयरफॉर फाइंड आउट द डेफिशिएंसी इन मी डिस्पाइट माय बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंटल Transcendence under disciplinary regulations and vows. तो आप प्लीज बताइए कि क्या है, और ये भी हम समझ सकते हैं व्यासदेव ये नहीं बोला कि अरे मेरे को ठीक नहीं लग रहा है हाँ कुछ, तो ये कुछ नहीं है, बेकार है, छोड़ के चले जा रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो उनसे स्पिरिचुअल मास्टर से पूछ रहे हैं कि आप बताइए मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मिस कर रहा हूँ जिसके कारण ये चीज। लेकिन यही तो चीज तो है एक्चुअल करने के लिए, इसको छोड़ना तो सॉल्यूशन है ही नहीं, छोड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है, पर इसी में भी इम्परफेक्शन रह गया है, तो क्या है जो मैं परफेक्शन के लिए क्या चीज मैं मिस कर रहा हूँ, बस वो चीज बताइए, तो दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं करना तो यही है, इसको छोड़ के तो और कुछ करने का मतलब नहीं है, लेकिन अभी तो हम लोग कहते हैं नहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आता है ना ऊपर, जब सिचुएशन आता है ना, तब तो कोई बात नहीं कान में जाता है। तब तो जो समझ गया हमने वही समझ गया, बस हो गया। तो आवर माइंड, इसीलिए तो हमने पढ़ा है दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव, ये सब पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें कल मैं वो क्वेश्चन बना रहा था उनके, तो उसमें आ रहा था एक, तो आता है कि एक डिवोटी या कोई भी जो मैटेरियलिस्टिक लोग हैं वो सोच सकता है, कोई डिवोटी सोच सकता है ये कहाँ फंस गए हैं, बेटर बेटर ऑफ विथ माय ओन अपार्टमेंट, माय ओन हाउस, माय ओन जो है फैमिली, माय ओन एंजॉयमेंट, मटेरियल कंफर्ट एंड सेक्स लाइफ, लेट मी बेटर ऑफ with all these things, I have the ability, you know, a devotee may think, I have the ability to get all these comforts, I have the ability to do this, so let me, but yahan pe kya kar raha hai, so ye thought a devotee ka mind mein aa hi sakta hai, hai na, so agar hamara mind aisa kehta hai, to what is the answer, to uska aage pe upar ne diya hua hai, aap log padhiyega, मतलब पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर डिवोशन में ही है, आई थिंक इंट्रोडक्शन में ही है शायद, इंट्रोडक्शन में या फर्स्ट चैप्टर में, तो ये आता ही है माइंड में, है ना, क्यों नहीं यार, हम पीएचडी है, हम वो है, इतना कुछ कर सकते
हैं,
और खास करके कब आता है, जब यहाँ पे हमें वो जो डिससेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, कि हमें वो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था अभी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, हाँ बेटर ऑफ लेट मी क्रिएट माय ओन सेटिस्फेक्शन, है ना, इन ए डिफरेंट वे। तो यहाँ पे वो नहीं कह रहे, यहाँ पे कह रहे हाउ, क्या मैं मिस कर रहा था, तो बताइए। तब नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आके उनको बताते हैं,
ये उसी से रिलेटेड है पूरा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, नेवर एवर लीव्स कॉल व्हाट एवर बी द कंडीशन, जैसे वो आप बता रहे हैं ना इसमें कि वो छोड़ नहीं रहे, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेफिशिएंसी,
यस ये चीज, दिस शुड बी आवर प्रिंसिपल, कुछ तो प्रिंसिपल लेके हमें चलना चाहिए ना,
कुछ तो होनी चाहिए
है कि नहीं, कुछ तो प्रिंसिपल लेके चलना चाहिए। और उसमें भी बताए थे माधुर कादंबिनी में भी उन्होंने बताया कि अगर आपको लगता, ये आगे आएगा श्लोक एक्चुअली नारद मुनि बता रहे, तो यहाँ पे नारद मुनि जब उनको बता रहे हैं तो ये बता रहे कि क्यों आपने प्योर डिवोशनल सर्विस को आपने नहीं प्रेजेंट किया, कृष्ण की प्योर ग्लोरिफिकेशन, प्योर जो है वो नहीं किया, तो उसमें वर्णन करते एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बता दें, ना यद वाचस चित्र पदम हरिर यशो, आपने सुना ये वर्स, बहुत सुंदर वर्स, ना यद वाचस चित्र पदम हरिर यश जगत पवित्रम प्रगृणीत करी चित्र तद वायसम तीर्थम उशंति मनस न यत्र हंस निरमंती उशिक्ष, those words which do not describe the glories of the Lord, those words which do not describe the glories of the Lord who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, मतलब the Lord who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe are considered, those words are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows, कौवे की तीर्थ स्थान, since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there, तो जो devotees हैं ऐसी बातों पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे बातों जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसे बातों या ऐसे जो वर्ड्स है, ऐसे लिटरेचर्स है, वो क्या है, कौवे की तीर्थस्थान। तो कभी कभी जैसे हम लोगों को करना पड़ता है ना, तो ऐसे एक क्या है जैसे न्यूज पेपर्स है, ठीक है, और इस तरह से कहीं तो, लेकिन कुछ चीज हो सकता है हमारा अभी एजुकेशन के संबंधित है, हमारा ऑफिस की लिटरेचर से है, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि वो हमें है फॉर हाँ वर्क, एंड दैट वर्क बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी वी नीड टू डू दैट, बट इट हैज टू बी प्योरली फॉर दैट पर्पस, नॉट फॉर एनी एंटरटेनमेंट, एनी एंजॉयमेंट काइंड ऑफ, सो फॉर एनी एंटरटेनमेंट फॉर डिवोटी, व्हाट इज एंटरटेनमेंट, इज दिस हियरिंग एंड कीर्तन इज द एंटरटेनमेंट, सो वो चीज जो है वो नहीं जाए। वर्स नंबर इज 1.5.10 फिर नेक्स्ट वर्स में कह रहे हैं, पर जो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है, जो प्योरली कृष्ण कॉन्शियस है, इवन दो दे आर इम्परफेक्टली कंपोज्ड आर दे आर हर्ड संग एंड एक्सेप्टेड बाय प्यूरिफाइड मैन हु आर थोरली ऑनेस्ट। तो कह रहे अगर ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर जो प्योरली कृष्ण को ग्लोरीफाई करता है, अगर वो थोड़ा सा डिफेक्टिव भी हो
अपेरेंटली,
तो इम्परफेक्टली कंपोज्ड, फिर भी वो क्या है, प्रिय है ज्ञानी लोगों के लिए। तो उसी पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो है प्रभुपाद लिखते हैं, आवर प्रेजेंटिंग दिस मैटर इन एजुकेट लैंग्वेज स्पेशली ए फॉरेन लैंग्वेज will certainly fail, and there will be so many literary discrepancies despite our honest attempt to present it in the proper way. जो फॉरेन में अमेरिका में जा रहे हैं वहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा नॉलेज कितना है, मतलब इंग्लिश की और उनकी कल्चर की, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब है ना अपना ह्यूमिलिटी प्रकट कर रहे हैं, बट वी आर श्योर दैट विथ ऑल आवर फॉल्ट्स इन दिस कनेक्शन the seriousness of the subject matter will be taken into consideration and the leaders of the society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the almighty god. to isme bhi bahut kuch hame wo karna hai, to agar hum pure way se hum agar cheez karte hain तो हो सकता है मिस्टेक रहते भी हो, पर उस मिस्टेक को नहीं देखा जाता है, कृष्ण नहीं देखते हैं, है ना, क्योंकि जो है मिस्टेक तो होंगे ही हमसे, हम कितना भी प्रयास करें भोग बनाने के लिए है ना, भगवान के लिए है, और कोई मिस्टेक ना हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता, तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब डिवोटीज के वो कह रहते हैं जब भोग भी ऑफर करते हैं कृष्ण प्लीज एक्सेप्ट आई हैव नो एबिलिटी प्लस प्लीज एक्सेप्ट एंड यू हैव नो नीड टू एक्सेप्ट बट प्लीज एक्सेप्ट दिस इज द प्रोपर दिस इज द मंत्र फॉर ऑफरिंग भोग सो इट्स लाइक दैट तो व्हाट एवर सर्विस जो भी सर्विस हम भी करते हैं तो वी शुड ऑफर कृष्ण प्लीज ये सर्विस की जरूरत नहीं है कृष्ण की प्लीज 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 एक्सेप्ट और ये सर्विस में कई सारे फॉल्ट्स होंगे आई एम नॉट सुपर परफेक्ट पर्सन मिस्टेक तो होंगे सो दिस वी शुड बी अवेयर कि आई एम नॉट सो परफेक्ट मेरा मिस्टेक होंगी ठीक है ये पहला एटीट्यूड है ना ह्यूमिलिटी बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है केयरलेस हो जाए कि मिस्टेक तो होंगी क्या है प्रॉब्लम है ये लिटरेचर तो लिखा है ना आदमी ने, है ना, इम्परफेक्टली भी कंपोज हो तो भी ठीक है, तो हम आर्टिकल लिख रहे 10 स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं, चलो देट विल शो। यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है कि दे विल अप्रिशिएट द सीरियस अटेम्प्ट, ऑनेस्ट अटेम्प्ट, बट इफ देर आर 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स it is not honest and serious attempt, genuine attempt. आप समझ रहे हो चीज को? तो serious honest attempt मतलब हम अपने जितना time है we review it properly. We know पहले तो devotees को सबसे ज्यादा review करनी चाहिए, क्योंकि devotees are aware कि चार mistakes, चार defects है हमारा. मेटेरियल लोगों को जनरली हो सकता है नहीं, हम तो गलती हो ही नहीं सकता, हमने कर दिया कि रिव्यू की जरूरत नहीं, जाओ. पर देखा जाता है उल्टा, बाहर के लोग वो अपना रिव्यू करते हैं, वो करते हैं, पूरा परफेक्टली प्रेजेंट करते हैं, और हम वी आर सो बिजी और सो यू कैन से कॉन्फिडेंट, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकता, हम बस नो नीड ऑफ रिव्यू, नो नीड ऑफ giving proper time, and we can see so many mistakes, you know, in our any kind of things, service we do. है कि नहीं? तो एक लेक्चर में सोच रहे थे कि जब एक कुछ भी अगर हम वो पढ़ते हैं, नॉर्मल भोगल गणित पढ़ते हैं, तो इतना सीरियसली पढ़ते हैं, पर जब भागवतम पढ़ते हैं तो क्या बस. तो उसी तरह एक नॉर्मल कुछ इवेंट हो तो कितना अच्छे से प्लान किया जाता है, लेकिन जब हम लोग को इवेंट हो जल्दीबाजी कुछ भी कैसे भी करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा एक वो रह जाता है कि इस टाइप से कि गलती तो होंगी, कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी, कृष्ण विल टेक केयर, तो कृष्ण कृपा से सब हो जाएंगे, और हम अपना पार्ट भी कृष्ण के ऊपर छोड़ देते. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो वी शुड राइट, वी शुड रिव्यू, देन वी शुड गिव, इट शुड बी फाइनल फ्रॉम आवर साइड, है ना. देखिए देनी है एनीथिंग, आप अपने मैं देख सकते हो कि मैं जब कोई रिपोर्ट देता हूँ, मैं जब फाइनेंस रिपोर्ट बनाता हूँ, या जो मैं वो करता हूँ, क्या इज प्रॉपर. तो ये चीज एक चीज से ही सब चीज पता चलता है कि मैं एक सर्विस जिसे करूंगा सारे सर्विस ऐसे ही करूंगा, ठीक है, चाहे सर्विस कितना स्मॉल हो छोटा हो डजंट मैटर, पर उसका करने का एटीट्यूड क्या है वो. तो उसके बाद भी हम पूरा केयर करने का बाद भी देयर कैन बी ए मिस्टेक, और वो चीज हमें अवेयर रहना चाहिए कि मैंने पूरा रिव्यू किया, पूरा सब कुछ किया, उसके बाद भी हो सकता है मेरा माइंडसेट स्किप हो गया. और फिर अगर कोई डिवोटी पॉइंट आउट करता है, then what should be our reaction? That should be our reaction.
Humbly accept that this is my fault.
That is a sign of knowledge. कि you are knowledgeable person. कि you know you are aware of your own weaknesses. कि there can be a mistake. बट इफ यू से कि यू नो प्रभु जी मैंने और इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना, मेरे पास जितना टाइम था मैंने बेस्ट कर दिया, है ना, और उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, इट इज एरोगेंस, है ना. सो वो जो है, और एक्सेप्टिंग हम्बली इज नॉट ओनली फॉर दैट टाइम बट इट विल हेल्प इन फ्यूचर ऑल्सो, कि ये मिस्टेक आगे भी नहीं, ठीक है. सो इट इज गुड दैट वी हैव सो मेनी सर्विसेज, क्योंकि सर्विस के माध्यम से ये सब पता चलता है.